गांव के समृद्ध लोगों के घरों में जब शादियां होती, हम बेहद खुश हो जाते। समृद्ध लोग सारे गांव को भोजन का न्योता देते, किंतु सभी के निबटने के बाद आखिर में हमारी बस्ती को बुलावा आता। इस प्रकार की शादियों में मैं और मेरे मित्र दिन भर उस घर के आसपास ही मंडराते, मड़वा देखते, बाजा सुनते, लाउड स्पीकर पर बस्ते गाने सुनते, सजी धजी लड़कियां देखते, बेहतरीन भोजन की सुगंध सूंघने को मिलती। हम छोटे छोटे बच्चे दिन भर मड़वे तले मंडराते रहते, बाजा बजने लगता कि नाचने कूदने लगते। इस बीच अचानक गांव वालों में से या उस घर वालों में से कोई व्यक्ति आकर हमें वहां से भगा देता। थोड़ी देर के लिए हम भाग जाते, किंतु धीरे धीरे फिर इकट्ठे होने लगते। शादी धूमधाम से होती, रिश्तेदारों को भोजन करवाया जाता और हम लोग बाहर भूख निकलते हुए खड़े रहते। कतार पर कतारें बैठती, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती। घर का कोई प्रौढ़ व्यक्ति गंभीर आवाज में पूछता, सबको परोसा गया है ना, लजाइए नहीं, आराम से खाइए। परोसने वाले कतारों के पास से आवाज़ देते हुए गुजरते, सब्जी खीर, कोई पूछता चपाती चाहिए, घी, अरे यह क्या, रोटी में तो गोबर की दुर्गंध थी, इतनी कि मानो मैं गोबर की रोटी ही चबा रहा था। मैं उसे सहजता से भीतर ढकेल नहीं सका, बड़ी मुश्किल से उसे भीतर ढकेल पाया और बचे टुकड़ों को मैंने लौटा दिया। आश्चर्य की संता माए उस रोटी को सहजता से खा रही थी। मुझे आश्चर्य होता कि संता माए को उपकाई क्यों नहीं आती, गोबर की दुर्गंध उन्हें क्यों नहीं महसूस होती। हाथ का निवाला मुंह में जाता, पेट में उतरता और लुप्त हो जाता। एक बार गांव की सड़क पर किसी स्त्री के हाथ से आटे का डिब्बा औंधा हो गया। वह स्त्री ऊपर से आटा समेट ले गई थी। मैं और दादा वहीं खड़े थे। उस स्त्री के निकल जाने के बाद मैं उस स्थान पर गया, मिट्टी के ऊपर का आटा समेटने लगा। आटे के साथ काफ़ी मिट्टी भी आ गई। घर पहुंचा, छलनी से आटा छानता रहा। संता माई मेरी इस करतूत पर खुश हुई, उन्होंने मुझे गोद में लिया, चूमा। उनके मुंह से तंबाकू की दुर्गंध आ रही थी। गोबर की दुर्गंध से मिली हुई रोटी की मुझे याद आई, मैं उनसे अलग हुआ। मुझे अभी भी याद है वह कहानी न दादा ने सुनाई न संता माई ने, वह मेरी अपनी कहानी है। मैं गांव में अकेला घूम रहा था, किसी की प्रेत यात्रा निकली थी। क्षण भर मैंने सोचा भाग निकलूं, भूत का डर जो था भयभीत हुआ। रात में वह प्रेत स्वप्न में आएगा, छाती पर बैठ जाएगा, पर भाग नहीं सका। राम बाप नामक व्यक्ति सिंह बजा रहा था, प्रेत के आगे पटाखे लगाए जा रहे थे, पीछे औरतें रोती हुई जा रही थी, प्रेत पर पैसे उछाले जा रहे थे। नीलगिरी की गंध आने लगी। प्रेत पर उछाले गए पैसों में से 5 पैसे मेरे पैरों के पास आकर गिर गए। उन पैसों का मुझे डर लगा, फिर भी मैंने उठा लिया और शायद उसी के लालच से मैं प्रेत यात्रा में सम्मिलित हुआ। शमशान भूमि के नजदीक विश्राम के लिए प्रेत को नीचे रखा गया। लोग भी थोड़ी देर के लिए बिखर गए। राम बाप ने बीड़ी सुलगाई। जेठिंगिया ने धीरे से मुझसे पूछा, कितने पैसे इकट्ठे हुए? मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, 10 पैसे। प्रेत यात्रा फिर शुरू हुई। राम बाप ने सिंह फूंका, जेठिंगिया ने हालगी डफली शुरू कर दी। विश्राम के लिए प्रेत को जहां रखा गया था, वहां आंचल भर ज्वार के दानों का ढेर पड़ा हुआ था। शमशान भूमि के भीतर ले जाने के पूर्व प्रेत को शमशान भूमि से थोड़ी दूर पर कंधा देने वाले विश्राम के लिए नीचे रखते हैं, खुद भी विश्राम करते हैं। प्रेत को विश्राम के लिए जहां रखा जाता है, वहां आंचल भर ज्वार और कुछ पैसे रखकर लोग प्रेत के पैर छूते हैं, अंतिम दर्शन करते हैं। मुझे विश्राम की वह ज्वार निमंत्रण दे रही थी, अंततः मैं वहीं रुक गया। मैं कमीज में ज्वार के उस ढेर को समेटने लगा और फिर तेजी से घर की ओर भागा। खुश हुआ कि संता माई मुझे आज कितनी आत्मीयता से चूमेंगी, प्यार करेंगी। सोच रहा था कि अमीरों की प्रेत यात्राएं रोज ऐसे ही निकलनी चाहिए, वे पैसे बिखेरते रहें और हमें पैसे मिलते रहें, साथ ही विश्राम ज्वार भी। संता माई फटी साड़ी में कपड़ा जोड़ रही थी। प्रेत को मैं छू चुका हूँ, इसका पता उन्हें लग चुका था। मुझे देखते ही वह उछल पड़ी, फटी चप्पल मेरी ओर फेंकने लगी। मैं रो पड़ा, अरे वह प्रेत पर की ज्वार है, जा उसे नदी में फेंका। मैं नदी की ओर चल दिया। जेठिंगिया राम बाप गीले कपड़ों में आ रहे थे, वे क्रियाकर्म से निपटकर अपने घर लौट रहे थे। अछूतों की बस्ती विश्राम के ज्वार की तरह है, यहाँ का एक एक व्यक्ति दाने की तरह। प्रेत पर की ज्वारी खाते क्यों नहीं है? वह भी ज्वार ही है ना, पर यह ज्वार अछूत क्यों? इसे खाने से किसी का पेट भरेगा, बोएंगे तो फसल उगेगी। नए वर्ष पर महारों के काम का बंटवारा होता, स्थानीय भाषा में इसे पाडेवार कहते हैं। पाडेवार का अर्थ होता है अछूतों के काम। उस दिन महारों की बस्ती के पुरुष बस्ती की चौपाल पर इकट्ठे होते। सभी के विचार विमर्श के बाद यह सम्मान चार चार परिवार की ओर जाता। सभी परिवारों में यह काम क्रमशः बांट दिया जाता। ऊपर की गली का एक, बीच की गली का एक, मुर्गी वाली गली का एक, निचली गली का एक, इस प्रकार ये घर चुने जाते। एक और गली थी, जू गली। उस गली के किसी भी घर को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। वे वतनदार नहीं थे, उनके बदन में हमेशा जू मिलते थे, इसलिए उन्हें जू की गली वाले कहा जाता। जिनके घर में पुरुष होते ही नहीं थे उन्हें भी अवसर दिया जाता। जो भी बूढ़ी या जवान औरत उस घर में होती उसे वह काम करना पड़ता। इन परिवारों को काम के एवज में अनाज दिया जाता, किसी को 20 किलो, किसी को 24 किलो, किसी को 8। इसके अलावा फसल की और भी चीज़ें मिलती। जिनके घर में पुरुष नहीं होते थे और औरतें काम करना नहीं चाहती थी वे अपना काम किसी और परिवार के पुरुष को दे देती। इसके लिए आधे हिस्से पर कोई भी तैयार हो जाता। चार परिवारों को कई काम करने पड़ते। महारों की बस्ती की बैठक को लीपना, वहां दिया बत्ती करना, सवर्णों के यहाँ कोई जानवर मर गया तो उसे खींच कर लाना, काटना, चमड़ा उतारना और उसे बेचना। जिनके घर पर जानवर मरता वे 2 किलो ज्वार देते। उस ज्वार को भी चारों में समान रूप से बांटना पड़ता था। शाम को बस्ती के सभी लोग बैठक पर सोने आते। बैठक सभी को अपने भीतर समा लेती। रात में बूढ़े अपनी जवानी की यादों में खो जाते। बूढ़ों की बीड़ियों के धुएं से वातावरण भर जाता। वे खांसते हुए परेशान हो जाते। अधिकांश बच्चे यहीं सो जाते। दिया बुझा देने के बाद आधी रात में कोई पुरुष किसी बच्चे के बिस्तर में घुस जाता। चिमनी के धुएं से बैठक के ताक काले हो जाते। खटमलों के खून से दीवारें रंगी रहती। लगता किसी ने दीवार पर पान थूक दिया है। ताक में रखी झाड़ू किसी मांत्रिक की तरह लगती। बैठक के सामने ही रात में सभी हिसाब करते। वह जगह काफी गंदी तथा विचित्र दुर्गंध से भरी रहती। वहीं कहीं बच्चों के खेल की गल होती। बैठक के निकट रखी गई बड़ी कड़ाही पर महारों की बस्ती के अनेक प्रकरण लिखे हुए मिलते। मरियाई का मंदिर पास ही में था। पुराना इमली का पेड़ कौवे तथा अन्य पक्षियों के घोंसले से भरा हुआ था। बरसों से सबको छाह देते हुए यह पेड़ खड़ा था। इसी पेड़ पर किसी न किसी जानवर का चमड़ा सुखाने के लिए टंगा रहता। गांव में जानवर के मरते ही उसका मालिक बस्ती में आता। जो हकदार होते उन्हें संदेशा देता। संदेशा मिलते ही उस परिवार के पुरुष उसे लाने जाते। जानवर छोटा होता तो कंधे पर ही उसे उठा लेते। बड़ी गाय भैंस हो तो बैलगाड़ी में लाते। दो आगे चलते, दो पीछे। हिंदू लोग गाय को माँ के रूप में पूजते हैं। माँ की मृत्यु के बाद उसका क्रियाकर्म करते हैं। परंतु इसी गाय की मृत्यु के बाद महारों को बुलाते हैं। जिसकी गाय मर जाती है उसकी मालकिन रोती रहती है। महार गाय की लाश को उठाते हैं, बैलगाड़ी में डालते हैं। मालकिन इस काम के लिए उन्हें ज्वार देती है। जिस महीने में जानवर अधिक मरते थे महारों के लिए वह खुशी का महीना होता। जिस माह में जानवर मरते ही नहीं वह महीना अकाल की तरह लगता। ऐसे समय कोई अछूत परेशान होकर किसी जानवर को कुछ गलत सलत चीज़ें खिलाकर मार देता। अथवा माणकुआना या प्रहलाद किसी दूर के गांव की भैंस भगा कर ले आते। रात में उसे काटा जाता। सवेरे सबके चूल्हों पर मांस पकता। किसी को पता भी नहीं चलता कि जानवर कहाँ गायब हो गया। मृत जानवर दिखते ही हम बच्चों को बेहद खुशी होती। उसे काटते या साफ करते समय हम नजदीक ही रहते। छोटे बच्चों को यह सब देखना नहीं चाहिए, यह कहकर बड़े बूढ़े हमें वहां से भगा देते। ताकतवर लड़के की वे सहायता लेते। मैं मृत जानवर के पैर कसकर पकड़ता। पुरुष छुरे से चमड़ा निकालते। रक्त तथा मांस के कारण हाथ गीले हो जाते। इस कारण पैर बार बार हाथ से फिसलता और ऐसा हुआ कि गालियां सुननी पड़ती। फिर से पैर कसके पकड़कर खड़ा होना पड़ता। स्कूल में पढ़ाई गई बातें याद आती, मतलब यकृत, फेफड़ा, हृदय, स्वादपिंड, छोटी अतरी, बड़ी अतरी, सभी हिस्सों को मैं बारीकी से देखता। आसपास कुत्ते इकट्ठे होते। एक लड़के की ड्यूटी ही होती थी कि वह कुत्तों को भगाए। कंकड़ लेकर वह वहां बैठा रहता। इस बीच अछूतों की बस्ती थालियां बर्तन लेकर वहां इकट्ठी होती। सभी मांस पर टूट पड़ते। वे चार घर वाले जिन्हें यह काम सौंपा जाता था और जिन्हें यह पाड़ेवाड़ कहा जाता है सबसे अच्छा मांस ले जाते। कलेजा, भेजा, जीव, अंतड़ियां, नरम मांस आदि वे ले जाते। बचे हुए पर कुत्ते तथा अन्य लोग झपटते। मैं डफली के लिए पतली झिल्ली उठाता, उसे नदी पर ले जाकर साफ करता, छलनी के ऊपर उसे कसकर बांधता तथा सुखाने बैठता। कुत्ते बिल्लियों के डर से उसकी रखवाली करता। अलबत्ता खाना खाते समय हाथों से दुर्गंध का एहसास होता। जानवर के मरते ही सफेद गिद्ध आ जाते। स्वर्ग से जिसकी डोर टूट जाती वह जानवर मर जाता। इस टूटी डोर का पता इन काफी बड़े सफेद काले भयंकर विद्रूप गिद्धों को हो जाता। बड़े बूढ़े बताते कि ये गिद्ध नाक पर झपट्टा मारेंगे, नाक काट खाएंगे। बचपन में हम खेल भी इसी प्रकार का खेलते, मतलब कोई साथी मृत जानवर के रूप में गिर जाता, हम 10-12 लड़के उसके आसपास गिद्ध बनकर इकट्ठा हो जाते। इस खेल में मातंग के बच्चे भी आते, परंतु वे हमसे काफी दूर दूर ही रहकर खेलते। मृत जानवर की भूमिका निभाने वाले को हम काफी छेड़ते, हम गिद्धों की तरह आवाज करते। मृत जानवर की हड्डियों का ढांचा कई दिनों तक वहां पड़ा रहता। छाती की हड्डियां, जबड़ा, सिंग, दांत, पैर सब कुछ भयावह दिखते। स्कूल में एक बार मनुष्य की हड्डियों का ढांचा बतलाया गया था। सभी प्राणियों की तुलना में आदमी का ढांचा सबसे भयावह लगता है। जब मैं 7वीं कक्षा में था तब मीलू जमादार का बछड़ा मर गया। एकदम ताजा गोरा था। अछूतों ने बहुत तेजी से उसे साफ किया। कई दिनों तक प्रत्येक घर पर चानियां सुखाने को रखे गए थे। चानी का मतलब मृत जानवर का मांस अधिक हो तो उसकी छोटी छोटी बोटियां बनाकर उन्हें साफ करके सुखा देते हैं तथा अभावग्रस्त दिनों में उसे खाते हैं। मैं जब स्कूल गया तब गांव के बच्चे उम्बिया मारुति को परेशान कर रहे थे। धेड़ धेड़ कहकर चिल्ला रहे थे। मेरे अंदर जाने के बाद कहने लगे, लो एक और धेड़ आ गया, इसने हमारा बछड़ा खाया है। लड़कियां गौर से सुन और देख रही थी। मैं भाग निकला, पेट में स्थित बछड़ा सता रहा था। सवेरे सवेरे की नींद में अचानक यह महसूस हुआ कि चंदा माँ जोर से चिल्ला रही हैं, बहुत आर्त आवाज में। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। संता माँ और दादा सोए हुए थे। चंदा माँ बहुत तड़के ही उठकर गुड़ की काली चाय बनाती और मुझे बुलाती। मुंह न धोकर मैं एक कप चाय पी लेता। उम्र के 10-12 वर्ष तक मैंने न कभी शौच के लिए पानी ले गया और न कभी सवेरे मुंह धोया। स्नान नदी पर जाकर करता और उसी समय अन्य काम भी हो जाते। बदन पर काफी गंदगी जमी रहती। साफ करने के लिए साबुन ही कहाँ था। पत्थर से शरीर को रगड़ता, कपड़े मिट्टी से साफ करता। चंदा माँ तड़के ही एक कप चाय देती। चाय पीने के बाद दादा और संता माई के बीच घुसकर मैं फिर से सो जाता। मेरे जागने के पूर्व ही दादा संता माई काम पर निकल जाते। जागने के बाद मैं नागी निर्मी मसा माँ के यहाँ चाय पीते। बाद में दूध की चाय बनाकर चंदा माँ फिर से बुलाती। संता माई गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाकर आने के बाद फिर से चाय बनाती, थाली भरकर चाय देती। मैं स्कूल गया होता तो मेरी चाय सुरक्षित रखती। खाने की छुट्टी में मैं घर आकर उस चाय में रोटी का चूरमा बनाकर खा लेता। कभी कभी संता माए लोटे में चाय लेकर स्कूल आती, मुझे कक्षा से बाहर बुलवाकर चाय पिलाती। स्कूल से आने के बाद चंदा माँ मुझे चानी भून कर देती। चंदा माँ के घर पर हमेशा सूखने के लिए चानी रखे मिलते। मधुमक्खी के कोष पर जिस तरह मधुमक्खियाँ निरंतर भिनभिनाती रहती हैं, ठीक उसी तरह इन मांस पिंडों पर लगातार मक्खियाँ भिनभिनाती थीं। चंदा माँ की बिल्ली सतत मेरे आसपास घूमती रहती। मैं भी बिल्ली से छेड़खानी करता, उसे भगाने की कोशिश करता, पर वह जाती नहीं। चंदा माँ बिल्ली को मारती, बिल्ली झोपड़ी में गंदा करती, उसकी दुर्गंध आती। उस दुर्गंध से मुझे कै का एहसास होता। चंदा माँ 2 बार चानियाँ लेती, उनके और छोटे टुकड़े करती तथा गर्म तवे पर उन्हें भूनती, तब उनमें से तेल निकलता। पूरे घर में चानी की गंध फैलती। बासी रोटियों के टुकड़े करती, गर्म तवे पर उन्हें रखती, उन्हें नीचे ऊपर करती, चूल्हे से उतारकर उन पर नमक मिर्च छिड़कती और तवा मेरे सम्मुख रख देती। मांस के तेल में भूनने से रोटी बहुत जायकेदार लगती। मैं मजे से खाता। चानी ना हो तो चंदा माँ रोटी तल कर देती। चूल्हे के ऊपर मिट्टी के एक बर्तन में जानवर की चर्बी रखी जाती। उस मिट्टी के बर्तन के मुंह को कपड़े से बांधकर करीने से उसे रस्सियों से लटकाया जाता। चंदा माँ को मूंगफलियां भूनकर खाने की बहुत आदत थी। पता नहीं किस किस से मूंगफली मांग लाती, उन्हें भूनती, गुड़ के साथ उन्हें खाती। मांग कर लाई हुई मूंगफलियां बड़ी हिफाजत से मिट्टी के घड़े में रखकर उसका मुंह बंद कर रख देती। बारिश के दिनों में उसे खोलती। ये सब चीजें, चानी, मूंगफलियां, मिर्च आदि दत्तू मामा लाकर देता। चंदा माँ और संता माए सगी बहनें थीं। ये कुल 6 बहनें थीं। 4 बहनें और थीं, ढोंडा, गंगा, रेवबाई तथा आइला। चंदा माँ को बुरहानपुर में, संता माई को तीर्थ में, ढोंडा को चुंगी में, गंगा को वलसंगी में और रेबाई को बागदड़ी में तथा आइला को सिरवल में दिया गया था। इन 6 बहनों में लक्ष्मण नाम का एक ही भाई था। 6 विवाहों के बावजूद लक्ष्मण अपने वंश को बढ़ा न सका। चंदा माँ तथा संता माई को उनके पतियों ने छोड़ दिया। चंदा माँ बांस थी इसलिए, और संता माई को उस एक ही संतान हुई, इसलिए बाद में कुछ हुआ ही नहीं। संता माई अपनी इकलौती लड़की लिए पूरी हिम्मत से हन्नूर में जी रही थी। हन्नूर में उनका मायका था। दत्तू मामा चंदा माँ की बहन ढोंडा का बड़ा लड़का था। दत्तू मामा चंदा माँ के पास अक्सर आता, चोरी करता, अंधेरी रात में किसी के खेत में घुसकर मिर्च, प्याज, मूंगफली चुराता। सवेरे सवेरे भरा थैला लेकर चंदा माँ के घर आता। चंदा माँ दत्तू को बहुत प्यार करती। दोनों थैला खोलते, कभी कभी थैले में मांस की बोटियां ही होती। चंदा माँ को मटन खाने की इच्छा हुई कि वह थैला भर मटन ले आता। दत्तू मामा का एक और भाई था, रोहिदास। वह हमारे गांव में कभी नहीं आता। कारण, यह हमारे गांव की किसी जवान औरत को उसने कभी भगाया था। अछूतों की पूरी बस्ती उसकी टोह में थी। एक दिन सवेरे सवेरे खबर आई कि ढोंडा मर गई है। चंदा माँ संता माँ बहन के क्रियाकर्म में हो आई। चंदा माँ काफ़ी रो रही थी। रोते हुए कहती, दत्तू ने ही मेरी बहन का गला दबाया है। मैं सोचता, क्या सचमुच दत्तू मामा ने अपनी माँ की जान ली होगी? मैं आज तक ढोंडा माँ की मौत का असली कारण तथा चंदा माँ के उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया हूँ। छह बहनों में संता माँ तथा चंदा माँ ही शेष रह गई हैं, बकरी के दो स्तनों की तरह। चंदा माँ और संता माँ जब सामान्य मनस्थिति में होती तो काफ़ी आत्मीयता से बातचीत करती। जब झगड़ती तब लगता कि ये दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगी। चंदा माँ संता माए को नीचे गिराकर ऊपर बैठती। वह बहुत झगड़ालू औरत थी। झोपड़ी के आसपास पड़ा हुआ पत्थर या मिट्टी तक वह किसी को उठाने नहीं देती। उनकी झोपड़ी के सामने के गिरे हुए गोबर तक को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। किसी पर झपटती, कभी वह मसा माँ से भी झगड़ती, एक दूसरे को गालियाँ देती। नागी और मसा माँ चंदा माँ के शरीर पर टूट पड़ती। ऐसे समय चंदा माँ चिल्ला चिल्ला कर सारी बस्ती को इकट्ठा करती। मसा माँ की मुर्गियाँ थीं, चंदा माँ की बिल्ली। बिल्ली मुर्गियों की टोह में रहती। परिणामतः नागी बिल्ली को मारती, चंदा माँ नागी को गालियाँ देती। तब मसा माँ बीच बचाव करती, कहती, तू अपनी बिल्ली को बांध कर रख, हमारी मुर्गियों को वह खाती है। बस झगड़ा शुरू हो जाता। मसा माँ और चंदा माँ में झगड़ा शुरू हुआ कि दोनों में कुछ दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती। चंदा माँ अपना गुस्सा बिल्ली पर निकालती, उसे बांध कर रखती। वह पुरानी खाट पर सोती थी। उस खाट के पैर से बिल्ली बंधी रहती। बिल्ली को वह बहुत चाहती। जब वे दोनों चंदा माँ और मसा माँ एक हो जाती, झगड़े बंद तथा बातें शुरू हो जाती, तो हम बच्चे बिल्ली को नदी के दूसरे किनारे पर ले जाकर छोड़ते। चंदा माँ मुझे 10 पैसे देती और कहती, बिल्ली की जान मत ले, पाप हो जाता है, काशी जाना पड़ेगा। वह डराती। मैं और नागी बिल्ली को छोड़कर आती कि वह हमें झोपड़ी में बुलाती, पूछती, बिल्ली का क्या हुआ? उसकी जान ली नहीं ना, कहाँ छोड़ाए, क्या वह चिल्ला रही थी? मैं खामोश रहता। बिल्ली के अभाव में उनका घर सूना सूना लगता। 4-6 दिन बाद वह किसी से बिलौटा मांग लाती, घर में बांध कर रखती, उसकी देखभाल करती। बिलौटा बड़ा होता कि हम उसे फिर नदी के उसी किनारे पहुंचा आते। गांव में बिल्ली पकड़ने वाले आए कि चंदा माँ बिल्ली को घर में बांध कर रखती। धीरे धीरे मुझे मृत जानवर से घृणा होने लगी। मृत जानवर का मांस खाने वालों पर भी गुस्सा आने लगा। मेरी आयु के सभी सहयोगियों में यह गुस्सा छूत के रोग की तरह फैलने लगा। चमड़ा उतारे हुए जानवर के मांस पर हम पेशाब करते, गोबर या मिट्टी फेंकते, पर गंगा माँ ऐसे मांस को भी ले जाती, धोती, पकाती। हम साथियों को उन पर गुस्सा भी आता और बुरा भी लगता। मृत जानवर का मांस कोई खाए ही नहीं, ऐसा लगता। संता माए बहुत गुस्सैल थी। घर पर माँ की जचगी हो चुकी थी। हम बाहर खेल रहे थे। इन दिनों संता माए हम पर बहुत गुस्सा करती। कहती, शिशु को किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, किसी के भी स्पर्श से उसे भूत बाधा हो सकती है। वह हमें बहुत गालियां देती। इन दिनों वह किसी को छूती नहीं। बाहर से आने के बाद झोपड़ी में प्रवेश करने के पूर्व कहती, पीछे मुड़कर थूको और फिर भीतर आओ। पैरों पर पानी डाले बगैर वह भीतर आने ही नहीं देती। भीतर जाने के बाद शरीर पर गोमूत्र छिड़कती। गोमूत्र लाने का काम मेरा या नागी का होता। हम लोग लोटा लेकर गायों के पीछे दौड़ते। गाय मूतती ही नहीं, लोटा भरता नहीं, परेशान हो जाता। इच्छा होती लोटे में खुद ही मूत कर ले जाऊं, पर साथ में बहन होती थी। बैल का मूत चलता नहीं था। गोमूत्र इतना पवित्र कि सारी अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती। गाय की योनि को स्पर्श करके हम उसे सहलाते और कहते, मूत मूत। तब गाय थोड़ा सा पेशाब करती। काफ़ी कोशिश के बाद हमें गोमूत्र मिलता। मुझे याद है कि एक बार संता माए ने मेरा चेहरा गोमूत्र से धोया था। अच्छा नहीं लगा था, पर करता क्या, उन्होंने जबरदस्ती ही मेरा चेहरा धोया था। लगा कि मुंह में दरारें पड़ रही हैं। वह कहती, गौमूत्र पी बीमारियां भाग जाती हैं। यह सुनने के बाद मैं खूब चिढ़ता। नागी को वह गौमूत्र पिलाती। गर्मी के दिन थे। मैं तथा मातंग समाज का भीमू, हम दोनों इन दिनों रोज खेलते। उसकी माँ हम दोनों पर स्नेह जतलाती। खेलते हुए एक बार प्यास लगी, इस कारण हम दोनों घर आए। मैं पहले पानी पी गया। भीमू को पानी दे रहा था कि संता माए चिल्ला उठी, अरे मातंग को साथ लिए क्यों घूम रहा है? उसके साथ क्यों खेल रहा है? गांव जल गया क्या? किसके साथ खेलने लगा? उसे लोटा मत दे, अपवित्र हो जाएगा। और वह भीमू को डांटते हुए कहने लगी, चल यहाँ से निकल। भीमू को पानी पीने से मना करने के कारण मुझे काफ़ी बुरा लगा। बिरादरी दोस्ती से भी बड़ी होती है क्या? प्यास से भी बिरादरी बड़ी होती है। भीमू आदमी नहीं है क्या? फिर उसके स्पर्श से पानी अपवित्र कैसे हो जाएगा? भीमू और मैं नदी पर चले गए। पैर जल रहे थे। नदी पर भी महारों का अलग घाट था और मातंगों का अलग। अब हम किस घाट का पानी पिए? यहाँ पानी ही पानी का वैरी बन चुका है। हमारा मन अब दो घाटों में बढ़ चुका है। मैं और भीमू मातंगों के घाट पर जाकर पानी पीने लगे। घर जाने के बाद संता माई ने मुझे इसलिए पीटा कि मैंने मातंगों के घाट पर का पानी पिया था। उन्होंने मुझसे कहा, आगे कभी मातंग लड़के के साथ खेलेगा तो याद रख, रोटी बंद कर दूंगी। फिर जा मातंगों की बस्ती में। मातंगों की संगत क्यों पकड़ रहे हो? आजकल ऐसे क्या बुरे दिन आए हैं तुझे? राजा का बेटा है तू, राजा की सांसे जी, पटेल का है रे तू। संता माए अनाप शनाप बक रही थी और उधर अंसा माँ ने भी भीमू को पीटा था। मुझे साथ में लेकर उसने मातंगों का घाट अपवित्र किया था इसलिए। बुधवार, मेरे गांव के साप्ताहिक बाजार का दिन। प्रति बुधवार दादा मुझे 10 पैसे देते। 10 पैसे लेकर मैं सवेरे से शाम तक बाजार में घूमता। कोई चुड़वा खाता, कोई केले खाता तो कोई जलेबी। अलबत्ता मैं 10 पैसों को देखते हुए थूक निकलता। अंत में बाजार खत्म होते समय शाम को उन 10 पैसों से एक पेड़ा खरीदता, उसे थोड़ा थोड़ा खाता। सबरी द्वारा जूठे किए गए बेर की तरह वह पेड़ा मैं माँ को ला कर देता। माँ उस पेड़े को खाने लगती। मैं कहता, बच्चे को भी दे देना। वह कहती, मेरा दूध बच्चे को चला जाता है ना, उस दूध के जरिए बच्चे को पेड़ा मिल जाएगा। मैं बच्चे को चूमता। मेरी बहन नागी को चोरी करने की आदत थी। उसके बाद की निर्मी, मैं नागी को घोड़ी, निर्मी को बिना नाक वाली, वनी को काली तो सुनी को लंगड़ी कहता। सुनी के बाद पमी, फिर तम्मा। तम्मा का नाम था श्रीकांत। श्रीकांत के बाद इंदिरा, उसे मैं अंधी कहता। इंदिरा की पीठ पर सिद्राम, वह गुजर गया। बड़े बुरे दिन थे। खाने के लिए मिलता ही नहीं था, सारे भूखे रहते। कभी कुछ मिलता, कभी कुछ भी नहीं। मुझे भूख लगती, मैं रोटी के लिए रोता। भूख सहन नहीं होती थी, खाता कम पर परेशान ज़्यादा होता था। परिणामतः संता माए गांव में रोटी मांगने जाती। संता माए के लौटने तक मैं परेशान हो जाता। संता माए आंचल में रोटी लिए आती, मुझे लगता वह दौड़ते हुए क्यों नहीं आती। वह मेरे सामने बंद आंचल को खोल देती, उसमें गांव की किसी सहृदया के घर की जूठन होती। रोटी के टुकड़े, अचार, बेसन की सब्जी, सब देखकर मुंह में पानी भर जाता। मैं बड़े चाव से खाता, वह अन्न अमृत की तरह लगता। संता माए का आंचल स्वर्ग की तरह महसूस होता। अन्न का अभाव तो मैं बचपन से ही महसूस कर रहा हूँ। सभी बहनें भूखी सो जाती, उन्हें खाने के लिए कोई जगाता भी नहीं था, क्योंकि रोटियां ही नहीं होती थी, वे भूखी ही सो जाती। हम लोग ही खा लेते, माँ केवल पानी पी लेती। दादा बीड़ी पीकर भूख को जलाते, मैं सोई हुई बहनों को निहारता। उन्हें देखकर मेरी नींद ही गायब हो जाती, भूख भी खत्म हो जाती। अपने हिस्से का निवाला उन्हें देने की इच्छा होती। बुधवार को वनी, नागी, निर्मी बाजार में टहलती, दिन भर बाहर ही रहती। बाजार में जो मिलता खा लेती। नागी और निर्मी तो बाजार में चोरी भी करती, खाने की चीज़ें चुराकर घर ले आती। हम सब लोग उन चीज़ों को खा लेते। चोरी नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता जरूर, पर पेट में क्या भरे? चोरी करने की हवस थोड़ी ही थी। गरीब और दरिद्र लोग भूख से मजबूर होकर चोरी करते हैं। उन्हें पेट भर अन्न मिले तो वे क्यों चोरी करेंगे? काले व्यवसाय करने वाले नेता बन जाते हैं और भूख से मजबूर होकर चोरी करने वाले गुनहगार। एक बार बड़े बाजार में किसी बागवान ने वनी को चप्पलों से पीटा। वनी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। उसका अपराध, उसने एक केला उठाया था। बागवान चिढ़ गया। उस बागवान की वनी के उम्र की लड़की भी होगी, पर उसके मन में कोई दया नहीं थी। लोग इकट्ठे हो गए, मेरी आंखें छलनी हुई छप्पर की तरह चू रही थी। शाम के समय बाजार खत्म हो जाता। लोगों द्वारा फेंके गए केले के छिलके वनी इकट्ठे करती। ऐसे ही किसी बाजार के दिन रस्ते पे बैठकर छिलके को खाते हुए मैंने उसे देखा। वहीं पर मैंने उसे पीटा। छिलके खा मत कहकर मैंने छिलके छीन लिए और दूर फेंक दिए। पर थोड़ी देर बाद मेरा विचार बदल गया। मैंने केले के छिलके इकट्ठे किए, मिट्टी से सने उन छिलकों को कमी से पोंछता रहा, बाद में नदी के किनारे जाकर खाने लगा। पर उसी समय मैंने अपने शिक्षक को वहीं से गुजरते हुए देखा। छिलके फेंक गए दिए, मानो भूखी फेंक दी गर्भपात की तरह। घर पहुंचा, माँ यम की तरह चित्रों पर बैठी थी, भूलोक के पापी आदमी की तरह वनी रो रही थी। माँ, मुझे भैया ने पीटा है, लोगों द्वारा फेंके गए छिलकों को यह खा रही थी, मेरा स्पष्टीकरण। माँ मुझ पर चिढ़ गई, कीड़ों और चींटियों को खाकर उसे जीने दे, तुझे क्या पड़ी है इज्जत की। कोर्ट में खड़े अपराधी के हाथ में स्थित गीता की तरह मैं मौन था। बुधवार के इस बाजार में एक नाई हजामत बनाने बैठा था। उन दिनों मैं स्कूल जा रहा था, मुझे भी औरों की तरह बाल कटवाने की इच्छा होती। पहली बार नाई के पास गया था, यूं अब तक माँ ही मेरे बाल काटती कहने के बजाय उन्हें साफ करती, कहना ज्यादा ठीक होगा। उनका तरीका यह था कि 10 पैसे के भारत ब्लेड से सारे बाल को वह साफ करती जाती। सिर पर आग सी पड़ती, अनेक स्थानों पर ब्लेड लगता, खून निकलता, मैं रोता। माँ गुस्से से लाल पीली हो जाती, खूब पीटती, मैं और चिल्लाता, लगता सिर पर का चमड़ा ही उधेरा जा रहा है। बहुत जलन होती। बाद में इतने चिकने सिर को देख कक्षा के लड़के तबले की तरह अपनी उंगलियां उस पर चलाते, मैं बहुत परेशान हो जाता। एक बार बाल साफ करने के बाद माँ उस ब्लेड को सुरक्षित रखती अगली बार के लिए। नाई ने मुझे देखा, मेरे सिर की ओर देखा, तू यहाँ क्यों खड़ा है, मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। मैं हिम्मत से बोला, मेरे पास पैसे हैं। उस समय दूसरे गांव का एक आदमी अपने बाल कटवा रहा था, उसे मुझ पर दया आई, उसने कहा बैठो। तो वह नाई भड़क गया, कहने लगा, अरे यह तो महार है, इसे जाने दो। गाँव के भैंसों के बाल साफ करने वाला उस नाई के लिए पता नहीं मैं क्यों अपवित्र था। दत्तू मामा का लड़का आरूढ़ उसी नाई के पास अपने बाल कटवा लेता था। वह दूसरे गांव का था, उसकी जाति नाई जानता नहीं था। बाद में मैं भी बाल कटवाने के लिए 4-5 मील चलकर दूसरे गांव के नाई के पास जाता, कभी चुंगी तो कभी बुहरानपुर। आगे चलकर श्रीमंत अन्ना ने नाइयों को कोर्ट में खींचा, उसके बाद वह हमारे भी बाल काटने लगा। संता माए सवेरे उठकर रोज मेरा मुंह देखती। मैं जब छोटा था तब मुझे पीठ पर बांधे वह गांव की सड़कें झाड़ती, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगाती। किसी भूरे के पास बैठकर मैं संता माए का झाड़ू लगाना देखता, उनकी झाड़ू के कारण धूल का बवंडर उठता, उसी बवंडर में वह झाड़ू लगाती, उनका चेहरा और शरीर धूल से भर जाता। झाड़ू लगाने के बाद मैं कूड़े को टोकरी में भरता, संता माए उस भरी टोकरी को सरपंच के घुरे पर डाल आती। हम दोनों बुधवार को तड़के ही निकलते, जानवर जब बाहर निकलते तब हमारा काम खत्म होता। तड़के जब हम दोनों निकलते तो शंभू बाप रास्ते में मिलता। शंभू विट्ठल का भक्त था, महारों की बस्ती का चोखा महार। रोज तड़के उठकर वह आरती के लिए निकलता, उसके हाथ में भगवा झंडा तथा गले में चोखा महार का कपड़ा बंधा रहता। हम उसके पैर छूते, वह हमारे माथे पर अबीर लगाता। झाड़ू लगाकर वापस लौटते समय रास्ते में शंकर भी मिलता, वह जानवर छोड़ो की आवाज़ लगाता, उसके कंधे पर काली गुदड़ी तथा हाथ में लाठी रहती। वह लंगड़ाकर चलता, वह सबके जानवर लेकर निकलता। बुधवार को सवेरे मैं बची खुची रोटियों के टुकड़े टिनी के साथ खाता, दोपहर में कसाई आता, सारी बस्ती उस पर टूट पड़ती। मसा माँ बकरी का मटन नहीं खाती थी, बकरे का हो तो ही लेती, मटन ताजा हो तो किलो 1.5 किलो लेती। बुधवार को हम कसाई की प्रतीक्षा करते, अतिथि की प्रतीक्षा की तरह। बुहरानपुर का कसाई साइकिल पर मटन का बोझा लेकर आता, वह दिखा कि मैं घर की ओर दौड़ता माँ को संदेशा देता। सभी झोपड़ियों में हलचल शुरू हो जाती, इमली के पेड़ के नीचे कसाई अपनी दुकान लगाता, वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते। पेड़ की किसी शाखा से वह ढेर टांग देता, बहुत सहजता से वह उसे काटता और तराजू में वजन करता। कुत्ते इकट्ठे हो जाते बूचड़ के सामने, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती। थालियाँ कटोरे लिए औरतें हो हल्ला करती, मक्खियाँ इतनी भिनभिनाती कि मांस दिखाई ही नहीं देता। कसाई हर बार हाथ घुमाकर उन्हें भगाता, आकाश में गिद्ध दिखलाई देने लगते। मैं माँ के साथ वहाँ पहुँचता, माँ अक्सर उसके साथ झगड़ती, टांग का मटन लगाओ ऐसा कहती, चर्बी मांगती, मेरे लिए कभी कभी गुर्दे कपूरे लेती। मटन की थाली को आंचल में छिपाए माँ घर की ओर निकलती, मैं कसाई द्वारा दी गई बोटियों को लेकर उनके पीछे पीछे निकलता। कभी अचानक ऊपर से चील झपटती और बोटियों को उड़ा ले जाती। चील के पंजों से कई बार हाथ लहू लुहान हो जाता। माँ पीटती, दो चार गालियां देती। संता माए चटनी रोटी खाकर सवेरे की निकलती। साप्ताहिक बाजार की जमीन पर झाड़ू लगाती, वहां दुकानदारों से कुछ मांगती, मैं उनके पीछे पीछे थैलियां लेकर निकल पड़ता। ग्राम पंचायत से संता माए को वेतन वगैरह नहीं मिलता था, ये लोग जो देते वही उनका वेतन होता। कपड़े के व्यापारी 10-10 पैसे देते, मिठाई के दुकानदार थोड़ी सी मिठाई देते, सब्जी वाले हरी सब्जियां, मिर्च, प्याज, सड़े गले फल देते। कुछ ऐसे भी थे जो कुछ भी नहीं देते। संता माए उनसे झगड़ती, वे बाद में आने के लिए कहते, दो दो बार जाना पड़ता। थैलियां चीजों से भर जाती तो मैं घर जाकर उन्हें खाली कर फिर ले आता। मैं दिन भर घर से बाजार, बाजार से घर दौड़ता रहता। इसी कारण बुधवार अच्छा लगता, बुधवार को ही कपड़े धो लेता, जरा ठीक ठाक रहता। महारों की बस्ती के सभी लोग उस दिन दोपहर तक मोल मजदूरी से लौटते, साप्ताहिक बाजार करने के लिए बस्ती पर उत्साह छा जाता। गांव भी काफी भरा हुआ लगता। आसपास के कई गांवों के लोग इस बाजार के लिए आते। सिवंता बाजार के दिन आती, बवंडर की तरह घूमती, मैं उसे देखता, वह मुझे। तब बाजार खत्म हुआ होता। बाजार खत्म होते ही कपड़े के व्यापारी कपड़ों की गठरियां बांधने लगते, गठरियां स्टैंड पर ले जाते। मैं हमाली की आशा से वहीं घूमता, हमाली मिलती, कपड़े का बोझा सिर पर लिए मैं स्टैंड पर जाता। दादा गुस्सा करते, कहते हमाली नहीं करनी है।